क्या माँ ने जो पापा के साथ किया उसके कारण तुम कशिश को पूरी तरह अपनाने से कतरा रहे हो? तुम्हारे मन में कहीं ये शंका तो नहीं कि कशिश भी तुम्हारे साथ वही करेगी? इसलिए तुम अपने और उसके बीच दूरियां बनाकर रखते हो ताकि कल को अगर वो चली जाए तो तुम्हें कुछ खास फर्क न पड़े। उफ, कैसा सवाल कर लिया था रजनी ने। इस सवाल से तो वो खुद बचता फिर रहा था, पर रजनी उसकी बड़ी बहन थी और उसकी जहनी कैफियत को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गई थी, जिसकी ईशान को कतई उम्मीद नहीं थी। वो चौंक गया था, पल भर को हड़बड़ा गया, फिर संभलते हुए बोला, ऐसा नहीं है दीदी, कशिश मेरी परेशानी नहीं है। मेरी परेशानी ये शादी का रिश्ता है। शादी और मोहब्बत जैसे रिश्तों की अहमियत, उनका अर्थ अपने माँ बाप से समझते हैं, और मैंने बचपन में प्यार का जो दोहरा रूप देखा, जिस तरह से शादी जैसे पवित्र रिश्ते को जलील होते देखा, मेरा इन सब पर से विश्वास उठ गया है। पहली दफ़ा ईशान ने अपनी दिल की उलझन उसके सामने बयां की थी और रजनी उसकी बात सुनकर यूं मुस्कुराई जैसे ये बात पहले से जानती थी। ईशु, मम्मी पापा के बिखरे रिश्ते को देखकर मन में इतनी कड़वाहट भर ली, कभी आसपास नज़रें घुमाकर चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी और काका काकी को देखा होता तो ये बदगुमानी नहीं आती तुम्हारे मन में। पता है ईशु, मोहब्बत कई लोग करते हैं, पर मोहब्बत करने से कहीं मुश्किल होता है उसे निभाना, जो सिर्फ गिने चुने चंद लोग ही कर पाते हैं। वैसे ही शादी के बंधन में लगभग सभी बनते हैं। शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन कहा जाता है, पर हमें हमारे आसपास ऐसे कई केस देखने को मिल जाते हैं जो सात जन्म क्या एक जन्म भी इस रिश्ते को निभा नहीं पाते और अलग हो जाते हैं। उनका अलग होना गलत नहीं, क्योंकि अगर साथ रहकर खुशी की जगह घुटन हो तो ऐसे घुटन भरे रिश्ते से आज़ादी बेहतर है दोनों के लिए, पर अलग होने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ पापा साथ खुश नहीं थीं। अगर ये बात वो पापा को बताती तो पापा उन्हें आज़ाद कर देते उस रिश्ते से, और तब इतना सब जो हुआ वो नहीं होता, हालात इतने नहीं बिगड़ते। पर माँ ने उस आज़ादी को पाने का गलत रास्ता चुना, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा, बस इसलिए वो गलत है। पर अगर दुनिया में माँ जैसे लोग मौजूद हैं तो हमें हमारे ही आसपास ऐसे बहुत सी मिसाल देखने को मिलेगी जिनमें ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो दो लोग एक दूसरे का साथ निभाते हैं जो शादी के बंधन में बंधे हों। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी गुस्सा, कभी नाराज़गी, हर वक्त से गुजरता है उनका रिश्ता, पर वो साथ रहते हैं और उनके रिश्ते को जोड़कर रखता है मोहब्बत, विश्वास, समर्पण, आपसी समझ व सम्मान। किसी भी शादीशुदा जोड़े के रिश्ते के सफल होने के ये चार कारण होते हैं, या ये कहें कि शादी जैसे रिश्ते के चार स्तंभ हैं वो, जिन पर वो रिश्ता टिका है। अगर किसी रिश्ते में ये चार चीज़ें हैं तो वो कभी टूट नहीं सकता। तुम सोचो कि तुम्हारे और कशिश के दरमियान किस तत्व की कमी है और क्यों तुम उसे अपनाने को तैयार नहीं। याद रखना यीशु, अगर इस डर को जीतने दोगे तो कशिश को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। अगर अतीत को पकड़कर बैठोगे तो कशिश के साथ अपना वर्तमान और भविष्य कभी नहीं बना सकोगे। कशिश बहुत चाहती है तुम्हें, और ये मैंने उसकी आंखों में देखा है। बहुत मासूम है वो, और सिर्फ तुम्हारे लिए इस घर में रहकर हर उस रिश्ते को निभा रही है जो तुमसे जुड़ा है। उसका दिल कभी मत दुखाना। अगर तुमने उसे खो दिया तो समझ जाना कि अपनी ज़िंदगी हार गए तुम, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि कशिश इतनी अच्छी है कि उसे कोई भी मिल जाएगा, पर तुम्हें कशिश जैसी लड़की दोबारा कभी नहीं मिलेगी। उसकी कद्र करना सीखो। अगर आगे चलकर सारी ज़िंदगी पछताने का इरादा ना हो तो जो बीत गया उसे भुलाकर जो आज तुम्हारे पास है उसे संभालने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ तुम्हें, मेरा भाई तो खुद बहुत समझदार है और अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर फ़ैसला लेने के काबिल भी है। रजनी ने स्पष्ट शब्दों में संजीदगी से उसे समझाया और उस पर विश्वास जाहिर करते हुए मुस्कुरा दी। ईशान जो बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था, जैसे उसकी ज़िंदगी की हर उलझन का हल इन बातों में छुपा हो। जब उसने कशिश के प्यार की बात सुनी तो बुरी तरह चौंक गया। आंखों के सामने कशिश का चेहरा उभर आया और जहन में उसके साथ बिताए पल घूमने लगे। कशिश को उससे मोहब्बत होगी इसका अंदाज़ा तो नहीं था उसे, और ना ही उसे इस बात पर विश्वास ही हो रहा था। कुछ पल वो अपनी सोच में खोया रहा, फिर दुकान के लिए निकल गया। दुकान पहुंचकर काफ़ी देर तक रजनी की कही बातों के बारे में सोचता रहा। कई दफ़ा फ़ोन में कशिश का नंबर निकाला, पर बीते दिनों की तरह नंबर मिलाने के बजाय बस खामोशी से नंबर को देखता रहा। फिर बहुत सोचने के बाद अंत में उसने कशिश को फ़ोन लगा दिया। दिल अजीब सा हो गया था, पहली बार इन अजीब से एहसासों से दोचार हुआ और धड़कते दिल के साथ कशिश के कॉल रिसीव करने का इंतज़ार करने लगा। दूसरे तरफ कशिश माधुरी जी के संग बैठकर टीवी देख रही थी, जब अचानक ही उसके फ़ोन की रिंग बजने लगी। उसने उचटती हुई नज़र फ़ोन पर डाली, पर जैसे ही नज़र स्क्रीन पर चमकते नाम और उस पर उभरी तस्वीर पर पड़ी, उसकी आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गईं। कशिश ने अब उम्मीद ही छोड़ दी थी। आने के बाद शुरू के दो तीन दिन बड़े आस से फ़ोन को तकती थी, पर धीरे धीरे वो इंतज़ार लंबा खिंचता गया और उम्मीद दम तोड़ दी गई। उसने इंतज़ार करना ही छोड़ दिया, पर आज अचानक ईशान की कॉल आई तो उसे ये उसकी आंखों का भ्रम लगने लगा। कई दफ़ा उसने अपनी पलकों को झपका कर देखा कि अगर उसकी इमेजिनेशन है तो ख़त्म हो जाएगी, पर हर बार वही नाम और वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। फ़ोन बज बज कर बंद होने ही वाला था, जब लगातार बजते फ़ोन को देखकर माधुरी जी ने उसे टोका। कशिश, फोन उठाओ बेटा, देखो कितनी देर से बज रहा है। जी जी आंटी, कशिश हड़बड़ा गई और तुरंत फोन उठाकर कमरे में चली आई, पर इतने में फोन कट चुका था। कशिश ने खुद से फोन करने का सोचा, पर फिर याद आया कि ईशान ने इतने दिनों में एक बार भी उसे फोन नहीं किया। यहां भेजकर तो जैसे उसे भूल ही गया। बस एक बार नाराजगी उसके सर पर सवार हो गई और कॉल बैक करने का आइडिया उसने ड्रॉप कर दिया। पर अगले ही पल फोन फिर बज उठा और कॉल करने वाला फिर से उसका संग दिल दिल पर निकला, जिसे उसकी भावनाओं और मोहब्बत भरे दिल की कोई कद्र ही नहीं। मुंह बनाते हुए उसने कॉल रिसीव किया और तल्ख लहजे में बोली, अब याद आई है आपको मेरी? ना हेलो ना कोई खैर खबर, सीधे ही नाराजगी जता गई और लहजा तो यूं था मानो शब्दों के पत्थर फेंककर उसका सर फोड़ने को तैयार बैठी हो। उसका सवाल सुनकर ईशान चौंक गया और असमंजस भरे स्वर में बोला, क्या मतलब? इतने दिन हो गए मुझे यहां आए, ना तो आपने कोई मैसेज किया और ना ही कॉल। कशिश ने फिर शिकायत लगाई, तो भला ईशान क्यों पीछे रहता? उसने भी उसी लहजे में जवाब दिया, वो तो तुमने भी नहीं किया ना, मैं तो आपकी तरफ से पहल होने का इंतजार कर रही थी। ना चाहते हुए भी कशिश के दिल की बात उसकी जुबान पर आ ही गई। इंतजार किया था उसने, सो जता भी दिया। दूसरे तरफ मौजूद ईशान के कानों में जब ये शब्द पड़े तो चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि मैं सामने से तुम्हें मैसेज या कॉल करूंगा? जानती नहीं हो मुझे जो ऐसी उम्मीद बांधी मुझसे। गलती हो गई जो आपके कोई उम्मीद ही कर ली। क्या करूं, याद ही नहीं रहा कि मैसेज या फोन वो करता है जिसके दिल में बात करने की इच्छा हो, जिसकी जिंदगी में आपकी कोई इंपॉर्टेंस हो, वही आपकी खैर खबर लेता है। पर आपकी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपको तो मेरे सामने होने पर भी मुझसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी, मेरी बातें भी मजबूरी में सुनते थे, फिर भला मुझसे बात करने के लिए मुझे फोन क्यों करते? गलती मेरी थी जो सब जानते हुए आपसे उम्मीद रखी। खैर बताइए, अब कैसे फोन कर लिया आपने मुझे?
कशिश ने अपने दिल की भड़ास ईशान पर निकाल ली। उसके शब्दों में अजीब सी उदासी और निराशा झलक रही थी, जिसे ईशान ने भी बखूबी महसूस किया। दिल में एक पल को ख्याल आया कि बता दे उसे कि ये सच नहीं। उसकी बातों की कमी तो बहुत खली उसे। बात करना भी चाहा, पर अपनी कम बोलने की आदत के कारण समझ ही नहीं सका कि फ़ोन करके कहे क्या, इसलिए कभी फ़ोन ही नहीं कर सका। पर दिल की बात दिल में ही रही, लबों पर ना आ सकी। ये पूछने के लिए कि आज शाम को आ जाऊं लेने, ईशान ने सीधे तौर पर काम की बात की, जो कशिश को नागवार गुजरी, और उसने तुनकते हुए जवाब दिया, मुझसे पूछकर मुझे यहां भेजा था जो लेने आने के लिए मुझसे इजाज़त ले रहे हैं? भेजने की बात अंकल आंटी से की थी तो अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अंकल आंटी से बात कीजिए, विदा तो उन्होंने ही करना है। ईशान ने महसूस किया उसके शब्दों में झलकती नाराजगी। ऐसी ही नाराजगी उस दिन उसकी आंखों में भी थी। ईशान कुछ पल शांत रह गया, फिर गंभीरता से बोला, तुम्हें भेजने का फैसला मेरा नहीं था, अंकल आंटी की इच्छा थी जिससे मैं इनकार नहीं कर सका। अगर तुमने नहीं जाना था तो खुद से इनकार कर देती। अब मुझसे शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे शिकायत कर भी नहीं रही, क्योंकि ऐसा कोई हक नहीं मुझे, कशिश ने खींचते हुए जवाब दिया और मुंह बना लिया। ईशान ने भौं से कोड़ी और उंगली से भौं सहलाते हुए बोला, काशी अभी तुमसे बहस करने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं। ये बताओ, आऊं आज लेने या कुछ दिन और वहां ठहरना है तुम्हें? मुझे नहीं पता, अंकल आंटी से पूछ लीजिए, कशिश ने रूखे अंदाज में जवाब दिया। दूसरे तरफ से ईशान ने फिर गंभीर स्वर में सवाल किया, उनसे भी पूछ लूंगा, पहले तुम जवाब दो। उससे पहले आप जवाब दीजिए कि आपको इतने दिनों में मेरी एक बार भी याद आई? कशिश ने सवाल के बदले सवाल किया, जिसे सुनकर ईशान चौंक गया। ये कैसा सवाल हुआ भला? जैसा भी है सवाल है तो अब जवाब दीजिए, आपको मेरी याद आई या नहीं? कशिश के इस सवाल के जवाब में जहां दूसरे तरफ मौजूद ईशान के सीने में मौजूद दिल का शोर वहां गूंज उठा, वहीं लबों पर गहरी खामोशी छाई रही। कुछ देर इंतजार के बाद भी जब कशिश को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला तो उसने अगला सवाल किया, मुझे लेने आने किसने कहा आपको? बिना लाग लपेट के कशिश ने सीधा सवाल किया और आवाज़ में इतना कॉन्फिडेंस था मानो पूरा विश्वास हो कि अपने मन से तो वो उसे कभी लेने नहीं आएगा, ज़रूर किसी ने कहा होगा। और उसका ये विश्वास और पक्का हो गया जब ईशान का जवाब उसके कानों में पड़ा, दीदी कह रही थीं कि बहुत दिन हो गए तुम्हें गए, अब वापस आ जाना चाहिए तुम्हें। इतना भी सच नहीं बोलना था, पर उस बेदर्दी ने ज़रा लिहाज न किया। उसकी सच्चाई कशिश के नाजुक दिल को टुकड़ों में तोड़कर बिखेर गई। लबों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई और आँखें बसीच गईं। उसने बिना आगे एक शब्द कहे फ़ोन काट दिया और उसे बेड पर पटक कर बाथरूम में घुस गई।